ओम ज्ञानतिमिरान्ध श्रीज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेव तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूत स्वयं रूपकदामयं विभाति स्वदान्तिकं हे श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द सद्वैतगदाधर श्रीवासदिपौरुभक्तिं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। 10th चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को अभी तक ये बताया कि चतुश्लोकी भगवद्गीता अंत में हमने चर्चा किया था। चतुश्लोकी भगवद्गीता का जो शुरुआत है वो है अहम सर्वस्व प्रभव से है। भगवान कहते हैं कि मैं ही सब कुछ, मैं ही सबका परमेश्वर हूँ, सबका आदि हूँ, सब कुछ मुझसे प्रवर्तमान होता है। तो वास्तव में भगवान तो चाहते थे कि उनके ऐश्वर्य का पहले बोल दिया कि मैं अपने ऐश्वर्य तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उनका इच्छा था कि वो ऐश्वर्य एक श्लोक में बता देंगे। तो भगवान ने कहा कि अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम बुधा भाव समन्विता। तो ऐसे जो मुझे सबका ईश्वर मानते हैं और सब कुछ मुझसे प्रवर्तमान है ऐसा मानते हैं, वो बुद्धिशाली मनुष्य होता है, वो मेरा भजन में लग जाता है। फिर वो लोग भजन कैसे करते हैं? ये लोग जो बुद्धिशाली है, जो मेरी भक्ति में जुड़ जाते हैं, तो उनका मुख्य रूप से भजन करने का तरीका क्या है? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर। ये भक्त भजन ते कैसे करते हैं? जो पूर्ण रूप से मेरे शरणागत होते हैं। मच्चित्ता, तो मच्चित्ता शब्द का अर्थ होता है चेतना पूर्ण रूप से मुझमें, मच्चित्ता मुझमें पूरा चित्त अर्पण किया हुआ, जिसके विषय में भगवान बार बार पहले बताए थे 9वें अध्याय में कि अनन्य चेता सततम युवाम स्मृति निश्चय, अलग अलग इस तरह से श्लोक उपयोग किए भगवान ने। और ये बार बार भगवान के यही बल पूरे भगवद्गीता के दौरान आपको प्राप्त होता है कि मन को भगवान के चरणों में स्थिर किया जाए, क्योंकि हमारी प्राथमिकता मन की जो है वो निरंतर बदलती रहती है, लेकिन भगवान को भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि निर्मय मन को स्थिर करो। इसलिए पहले मच्चित्ता मदगत प्राणा, मुझ में मदगत प्राणा शब्द का अर्थ होता है उनके प्राण वो मुझे अर्पण किए हुए हैं, या मेरे लिए वो कुछ भी त्याग करने को तैयार है। बहुत मुश्किल है, भगवान के लिए कुछ भी त्याग कर सकते हैं। तो कल एक भक्त से, परसों एक भक्त से बात कर रहा था, एक भक्त मुझे बता रहे थे कि मैं गुरु के लिए, भगवान के लिए जान तक दे देता हूँ, दे सकता हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा लेकिन एक दाढ़ी तक नहीं दे सकते। तो दाढ़ी बढ़ाते ना, आजकल फैशन हो गई, कुछ लोगों के भक्तों में देखा गया है वो दाढ़ी बढ़ाते। तो मैंने कहा कि तुम जान दे सकते हो गुरु के लिए, लेकिन दाढ़ी नहीं निकाल सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि मदगत प्राणा शब्द का अर्थ होता है पूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पण भावना के साथ कुछ भी त्याग करने के लिए हमेशा तैयार होना। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च, वो अपने एक दूसरे को भगवान की कथा बताते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम निरंतर तुष्यन्ति, आनंद प्राप्त करते हैं, संतोष प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो भक्त होते हैं उन लोगों को अगर कभी आवश्यकता पड़ती है, मैं देखता हूँ, पहले भगवान ने कहा ऐसा कि मैं देखता हूँ ये लोग मेरे विषय में कथा कर रहे हैं नित्य और इस तरह से प्रेम पूर्वक मेरा भजन भी कर रहे हैं निरंतर, तो फिर कभी उनको कुछ कमियां होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो कई चीज समझ नहीं पाते, कुछ चीज उनके समझ सकते से कुछ चीज नहीं, अधिक से अधिक चीज बाहर होती है। कई बार कुछ डायरेक्शन चाहिए, कुछ मार्गदर्शन चाहिए भगवान का, कुछ निर्णय शक्ति चाहिए, तो इसके लिए फिर वो भगवान से प्रार्थना करते कि मुझे आप बुद्धि दीजिए। तो भगवान देखते कि ये व्यक्ति मुझे समझना चाहता है, क्योंकि वो प्रभुपाद का किताब खोल करके बैठा है। अभी उसको पता नहीं किताब में क्या लिखा है, लेकिन उसको कहा गया कि ये किताब पढ़ने से तुम्हारा भला हो जाएगा, तो उसने उसका मन क्लियर है कि प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। अब इस ग्रंथ को समझने के लिए जो शक्ति चाहिए, इस ग्रंथ को पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए जो बुद्धि चाहिए, भगवान कहते हैं कि फिर मैं देखता हूं कि ऐसा भक्त है जो मेरे पास आ जाता है, मैं उसको फिर बुद्धि देता हूं। और बुद्धि के माध्यम से ऐसे ऐसे निर्णय कर सकता है, ऐसे ऐसे पराक्रम कर सकता है कि साधारण व्यक्ति को उसको सोच ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान अपने माध्यम से भक्त के माध्यम से भगवान खुद कार्य करते हैं। बुद्धि भगवान देते, कार्य क्रेडिट भक्त को मिल जाती है। और फिर चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि केवल बुद्धि देता हूं इतना ही नहीं, लेकिन कभी कभी तो मैं उनके हृदय में जब इस तरह से जुड़ जाते मेरी सेवा में, तो मैं स्वयं ही चला जाता हूं उनके हृदय के अंदर और सारी अज्ञानता को जला करके भस्म कर, सारा अंधकार उनके हृदय में जो है, हमारे हृदय में हम लोग साधक भक्त के रूप में माने जाते हैं। साधक भक्त, साधक भक्त का अर्थ होता है कि जिनको स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है। हमारा साधक का अर्थ होता है कि हमें 16 माला जब, 4 नियम का पालन, मंगला आरती, गुरु पूजा, नियमित रूप से जो भक्ति के विधि विधान है उसका पालन करना, तो हम साधक भक्तों में आते हैं। साधक भक्त जो होता है उसको भगवान स्वयं उसके हृदय में से एक कचरा निकाल देते हैं स्वयं। ऐसे तो साधक भक्त का भगवान के सामने कोई ज्यादा महत्व नहीं है, ऐसा है नहीं कि भगवान किसी साधक भक्त के लिए कुछ विशेष से कुछ कार्य करते, ऐसा कुछ नहीं। कल ही मैं चैतन्य चेतन पढ़ रहा था कि भगवान का जो माधुर्य संबंध है गोपियों के साथ, राधा कृष्ण के साथ, वृंदावन की जो लीलाएं हैं, ब्रज लीला, वो साधक भक्त नहीं समझ सकते। पढ़ने में कल में साधक भक्त का नाम उस लिस्ट में था, ज्ञानी हो, कर्मी हो, उन सबके लिस्ट में। तो और हम लोग साधक भक्त है, तो प्रभुपाद जी बताना चाहते थे उस वो चैतन्य चरितमृत में पढ़ रहा था कि जब तक साधक साधन भक्ति पूर्ण रूप से सफल नहीं होती, या धीरे धीरे जब हृदय में राग भक्ति का उदय नहीं होता, तब तक आप ब्रज लीला को बाहर से ही देखोगे। केवल आप धाम में विजिट करके आओ, 2-4 अच्छी कथा सुन लो और आपका मन फ्रेश हो जाएगा, वापिस आ जाओ, दैट्स इट। उससे अधिक कुछ नहीं, अधिक से अधिक आप भगवान की महानता को थोड़ा समझ पाओगे। ओ भगवान बहुत दयालु है, भगवान बहुत आनंदमय है, इतना थोड़ा समझ पाओगे बस, उससे अधिक कुछ नहीं। तो साधक भक्त के हृदय में जो अंधकार है वो क्या है? काम आदि शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो ये जैसे विशेष करके हम लोग कहते हैं भक्तों को हमेशा कि ऐसे तो ये शत्रु सबको विद्यमान, सबके हृदय में विद्यमान है। काम का प्रभाव अर्थात दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण, फिर क्रोध का प्रभाव, क्रोध अर्थात अपनी मनमानी नहीं होने का, अहंकार नष्ट होने का प्रभाव, तो इससे क्रोध होता है ना। अहंकार जब आपका हर्ट होता है तो क्रोध होता है। लोभ अब ग्रहण करते ही जाते हैं, उसका उपयोग भी नहीं कर पाते फिर भी सब संग्रह करना चाहते हैं, लोभ का प्रभाव। काम, क्रोध, लोभ, मोह का अर्थ होता है कि जिसमें आपको जो वास्तविकता नहीं है वो चीज आपको वास्तविक लगती है, अर्थात जहां पर सुख नहीं मिलता वहां पर आपको सुख लगता है। वो उसको मोह बोलते हैं, इल्यूजन। जो चीज हमेशा नहीं रहने वाले उसके लिए हम समर्पित हो जाते हैं, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, बैंक बैलेंस के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं पूरा। तो इसको बोलते हैं मोह। मैं इस सब संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं क्योंकि ये चौथा श्लोक जो था गीता, चतुर्श्लोक की गीता का, उसमें इस बात का बल दिया गया है। क्योंकि ज्ञान दीपे ने भाषता, अंधकार को नष्ट करते भगवान। मोह मद मत्सर्य, मद का अर्थ होता है अहंकार और मत्सर्य का अर्थ होता है ईर्ष्या। तो ये सब हम में है। अहंकार का अर्थ होता है कि अहंकार के कई रूप होते हैं, लेकिन कई बार अहंकार अधिकतर देखा जाता है कि हम एग्जाम्पल के रूप में हम किसी के सामने झुक नहीं सकते, किसी को हमसे अधिक महान गिनना मुश्किल हो जाता है, कोई हमसे अधिक बुद्धिशाली है ये हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे रूप है अहंकार के। फिर ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ होता है किसी की प्रगति हमसे देखी नहीं जाती, और ईर्ष्या के बस फिर हम विनाशक कार्य करने लग जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव, जिससे हमारा भी विनाश होता है और दूसरे का भी विनाश होता है। ईर्ष्या, द्वेष, इस व्यक्ति ने मुझे आदर नहीं दिया था जब मैं उसको लास्ट टाइम मिला था, तो उसने मुझे आदर नहीं दिया था, तो टीट फॉर टेट, अब मैं देखो मैं भी उसको ऐसा ही करूंगा। मैं उसके फिर उसके साथ द्वेष धीरे 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 बढ़ता जाता है, क्रिएट होता है, और कई बार तो ये द्वेष, ये ईर्ष्या बहुत बड़ा बड़ा रूप लेती है। 5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक उसको अगर ठीक नहीं किया जाता तो उसका आकार बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता जाता है, और फिर परिणाम आता है कि हमारे हृदय में उसके प्रति अपराध भाव रहता है, द्वेष भाव रहता है। और छह गोस्वामी हमें सिखाते हैं कि ये भावना जो है वो आपको भक्ति में कभी भी सहायता कर ही नहीं सकते। ये हो पॉसिबल ही नहीं है कि ये भावना के वाला कोई भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हो सके, संभव ही नहीं है। एक भी भक्त नाराज नहीं होना चाहिए, अब बताओ। एक भी भक्त आपसे दुखी नहीं होना चाहिए। मुश्किल है ना, मुश्किल है, लेकिन आपकी गलती के कारण नाराज नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित हो फिर भी अगर वो नाराज है तो फिर अलग बात है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। लेकिन हमारे वजह से या हमारी किसी गलती की वजह से वो अगर वो नाराज है तो फिर वो भक्ति में हमें बाधा के रूप में खड़ा रहता है, उसका चुकता करना पड़ता है, साफ करना पड़ता, तब जाके आगे बढ़ सकते हैं। सो चतुर्श्लोक की गीता में जब बोधयंत की बात हुई तो मैं जस्ट जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको एक ही मिनट में, हमें हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन हम आपको और भी बहुत सारी एक्सरसाइज आज करनी है, लेकिन ब्रीफली अगर आप बता सको, क्या आपको कोई ऐसा स्मरण है कि हो सकता है पिछले 5 साल के भीतर ऐसा कोई समय आपको याद है जिसमें आप भगवान की कथा, भगवान की कथा मीन्स जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान से जुड़ी हुई हो ऐसी कथा, तो भगवान की कथा आपने किसी भक्त के साथ, गुरु के मुख से, किसी सन्यासी या वरिष्ठ भक्त के मुख से आपने सुनी हो, उस समय आपको अत्यधिक आनंद का अनुभव हुआ हो। अत्यधिक आनंद का अर्थ क्या होता है कि उसका अनुभव आप स्वयं कर सकते हो हृदय से, यद्यपि आप बताओ नहीं बताओ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हो कि यू फील वेरी जुबिलेंट, बहुत अच्छा अनुभव होता है आपको। यस बताइए।
4-5 साल
इन ब्रीफ। यस
वृंदावन धाम में से भद्र सामंत
महाराज
बलराम,
यस,
ये गोपीनाथ जो भजन है
उसका महिमा बता रहे
थे नशा के साथ सुना,
वेरी
गुड, तो वो आज भी मतलब वो आनंद
बहुत अच्छा लगता है वो। Yes, so this is like talking directly about Krishna. Yes. और मैं अपने विषय में बताता हूँ, ऐसे तो कई अवसर ऐसे, लेकिन जो बहुत ज्यादा रिसेंट है वो कृष्ण लीला सुना था रिसेंटली पंकजांगिर प्रभु के मुख से और वैष्णव महाराज के मुख से रिसेंटली द्वारका यात्रा और सब पूर्वजा यात्रा में, तो इसमें आपको ऐसा अनुभव मुझे हुआ था उस समय कि यू आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप इस धाम में रहते हो, आपको आप पूरा दूसरे विश्व में चले जाते हो। सो तो आप इस तरह से आप कुछ एनीथिंग, दिस इज जस्ट सैंपल, और आप कुछ बताना चाहते हो? यस,
ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कीर्तन के टाइम हुआ था, वो कीर्तन कर रही थी, वो रात में फर्स्ट टाइम सुना था, फर्स्ट रो में बैठा था, तो उस टाइम जो एक्सपीरियंस हुआ था
बहुत अच्छा लगा था।
वो मुझे मतलब मुझे मेरे को ढकना हो रहा था, क्योंकि
अच्छा, अच्छा।
मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था,
अच्छा,
बह ही जा रहा था, और उस टाइम जो अनुभूति जो होती थी वो बहुत
ट्रांसेंडेंट। वेरी गुड, दैट इज लाइक 7 years, 7-8 साल पहले,
राइट?
अच्छा,
और वो राग मैंने अपने में ज्वाइन कर लिया है, मैं कभी कभी कई बार
जाता हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और कोई भक्त शेयर करना चाहते?
यस, पहले जगन्नाथ भगवान की स्टोरी क्या है वो हमें पता नहीं था, लेकिन जब किचन में किचन था तो उसमें जो पुष्कर प्रभु ने जो ऐसे जो स्टोरी बताई थी जगन्नाथ भगवान की, वो देख के ऐसे घोंटे खड़े हो गए थे,
अच्छा।
कि अरे भगवान ने ऐसी लीला की थी,
बहुत सुंदर। तो डायरेक्ट कथा, यस,
मुझे प्रभुपाद के लेक्चर में सुना था वो, मतलब जैसे आप बता रहे थे भगवान के धाम के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे थे ब्रह्म संहिता से कुछ लोग से, तब हमें ऐसे ही मतलब लगे कि एक्चुअली ऐसा कुछ विश्व है, प्रभुपाद वहां से ही आए और नरेट कर रहे हैं, हमें लगता है कि एक्चुअली ऐसा है, तब जब तक वहाँ प्रभुपाद जो विस्तार से बताया नहीं है तब ऐसा वो कनेक्ट नहीं हो रहे थे।
यस, वेरी गुड, प्रभुपाद के कई ऐसी जगह पर लेक्चर्स या कन्वर्सेशन है, कई जगह पर प्रभुपाद ऐसी चीज बताते हैं कि जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बता सकता इस संसार में, वो केवल वही व्यक्ति बता सकते हैं जो परंपरा के माध्यम से इसको समझते हो या फिर वहीं से आए हो, तो ये व्यक्ति बता सकते हैं। यस, सो इस तरह से दुष्यंती च रमंती च, इससे संतोष प्राप्त होता है। यस, बताइए।
मैं पहली बार जब राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुना तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तभी मैंने थकी जा लिया था कि मैं
इनसे शरण लूंगा। वेरी गुड, बहुत सही है। सो ऐसे भी महाराज का जो कथा है आज भी पूरे विश्व में सबसे अधिक भागवत का जो ज्ञान बात बांटने में उससे अधिक प्रचार प्रचलित और कोई नहीं अभी स्टिल, और जितने भी हमारे बड़े बड़े भक्त सन्यासी जीबीसी सब महाराज की कथाओं को बहुत आदर करते हैं। सो यस, और कोई भक्त शेयर करना चाहते हैं? ओके, सो भगवान इस तरह से चार श्लोक में पूरा बताया सार, और 10वें श्लोक में विशेष करके जब मैंने आपको बताया कि भगवान बुद्धि देते हैं, और वही श्लोक है तेसाम सतत युक्ताना वेदान, तो उसके आधार पर हम आपको तीन स्टेटमेंट आपको देते हैं, इसमें अब तीन तीन भक्तों का एक एक ग्रुप और दो माताओं का एक ग्रुप, तो हर एक को एक एक स्टेटमेंट मिलता है, आपको इसका उत्तर देना है, उत्तर इन द सेंस कि आपको इसके ऊपर कमेंट देनी है, लेकिन वो कमेंट ज्यादा डिटेल नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट में देना है कमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर लेक्चर भी हो सकता है इसमें, बट वी गिव स्मॉल स्टेटमेंट, नाउ यू हैव टू कमेंट ऑन दैट, अब इसके ऊपर कमेंट देनी है, ठीक है? तो आपको समय मिलेगा आपस में डिस्कस करने का। सो 11वां तक हमने लास्ट टाइम किया था, अभी आगे का हम कर रहे हैं आज, प्रयास करते हैं हो सके तो कंप्लीट दिस चैप्टर। सो अभी काफी समय से अर्जुन कुछ बोले नहीं थे, तो जब अर्जुन ने ये सब सुना कि अहम सर्वस्व प्रभव, तो अर्जुन तो चौंक गया, मैं सबका, आप सबके स्वामी हो, प्रभव सब कुछ सबके स्वामी है, अरे यही कृष्ण जिनके साथ मैं निरंतर खेलता था, वो सब यू आर माय फ्रेंड इज मास्टर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ मुझसे प्रवर्तमान होता है। सो अभिभूत हो गया बहुत अधिक। अरे भगवान और चतुष्टोकी गीता, उसमें भगवान यहाँ तक बता दिया कि मैं सबके हृदय में जाकर के सारा खतरा हटा देता हूँ, उसको बुद्धि देता हूँ। एनी वाज सो एक्सटेटिक अर्जुन, और उसी समय एक्चुअली भगवद गीता को एंड कर ही दिया था अर्जुन ने, इधर ही चतुष्टोकी गीता के टाइम पे ही अर्जुन ने नेक्स्ट कमिंग 12 नंबर से, तो एक्चुअली अर्जुन सब एक्सेप्ट कर ले। देखो 12 और 13 पढ़िए।
अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महान कर्म है, नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं।
Yes. तो भगवान अर्जुन इतना प्रसन्न हो गया, सीधा इस तरह से ये दो श्लोक कह दिया क्या कि आप जो है वो परम ब्रह्म है, परमेश्वर, आप जो कुछ कहते हो सब कुछ मैं स्वीकार करता, एक्सेप्ट एवरीथिंग, आई एक्सेप्टेड व्हाट एवर यू सेड, आप परम ब्रह्म हो, आप परम पवित्र हो, परम ब्रह्म परम धाम, आप परम धाम हो, सबके अंतिम आश्रय स्थान, परम पवित्र हो, अर्थात केवल पवित्र व्यक्ति ही आपके पास आ सकते हैं, या पवित्र होकर के ही आपके पास आ जा सकता है, पूर्ण रूप से पवित्र मन से भी और शरीर से भी, परम पवित्र है भगवान, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र, परमम भगवान, पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हो, आपका कभी अंत नहीं होता, दिव्यम, आप दिव्य हो, अजम विभूम, शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम, आदिदेव, आपका कोई आदि नहीं है, आप सबके आदि हो, अजम आपका जन्म देने वाला कोई नहीं है, और आप ही सर्व का आदि हो, ब्रह्मा शिव इत्यादि सब आपसे प्रकट होते हैं, यहाँ तक कि सब पुरुष अवतार अलग अलग जो है, चार हाथ वाले जो महाविष्णु है, गरुड़ साहब विष्णु, ये सारे आपसे प्रकट होते हैं, आदिदेवम अजम विभूम, आप सबसे महान हो, और ऐसा नहीं कि केवल आप कह रहे हो, इसलिए सब लोग ये कह रहे हैं, असीतो देवल व्यास, क्या है उसके पहले वाला, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, ऐसा नहीं है कि आप बता रहे हो, लेकिन सारे ऋषिगणों ने भी यही कहा है, सभी ऋषिगणों का यही मत है, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, नारद मुनि ने भी यही बताया है, असीत देवल व्यास इन लोगों ने भी यही घोषणा बताया, और आज ये बात आप अपने मुख से स्वयं बता रहे हो, स्वयं एवं जो क्या भविष्य में, स्वयं चैव भविष्य में, तो ये आई थिंक ये आपके केएमवी होगा, और केएमवी होगा शायद, है ना, ये नहीं है,
है ही,
अच्छा बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, चतुर्थ श्लोक ही है, मैं हम आपको केएमवी का लिस्ट बढ़ा के देंगे, अच्छे अच्छे श्लोक है।
प्रभु जी दो नाम नारद जी और व्यास का सुना, ये असित और देवल,
देवल असित ये सब हमारे ऋषि गणों में है, सबसे प्रसिद्ध है, एक्चुअली रैंडम नाम यूज किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई, हाँ आशीष ऋषि देवल ये सब, क्योंकि पहले तो एक बार बोल दिया सारे ऋषि गणों का यह मत है, लेकिन फिर अलग से जैसे कई बार बताते ना बोलने का तरीका है ये कि सब देवता इंद्र चरण इंद्र चंद्र वरुण आदि सब देवता लाइक दिस। अभी इंद्र चंद्र वरुण तो वो और कोई सोचा अग्नि सोचेगा मेरा नाम नहीं लिया, ऐसा नहीं है सबका।
भक्त ऋषियों के नाम
लिए, हाँ ऑब्वियस भक्त ऋषियों के वही भगवान को परम ब्रह्म मानेंगे, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। सो अर्जुन ने इस तरह से बताया और एक्चुअली ये तरीका है। प्रभुपाद एक जगह पर ये भी बताया कि भगवान को स्वीकार करने का यही तरीका है कि हे प्रभु आप जो कुछ कह रहे हो मैं उसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ, यही तरीका है। गुरु के पास जाने का भी यही तरीका है, आप जो कुछ भी कह रहे हो आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, सब कुछ स्वीकार करता, कुछ भी ऐसा नहीं कि शंका रह गया या मैं ठीक है आप बोल दो आप गुरु हो इसलिए मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा लेकिन मेरे मन में अभी ये बात सेट नहीं हो रही है, ये नहीं चलता है। गुरु के पास भगवान के पास यह तरीका है जाने का, व्हाट एवर यू आर सेइंग आई एक्सेप्ट इज ट्रूथ। तो भगवान सभी चीजों में परम है, एवरीथिंग इज सुप्रीम। सो नाउ फर्दर अर्जुन कहते हैं आगे कि 5 श्लोकों में भगवान के अपने ऐश्वर्य को प्रस्तुत करने का रिक्वेस्ट करते हैं। तो 14 नंबर का श्लोक पढ़िए।
हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं।
देवता भी नहीं, न तो विदु
सर्वमृत मृत
सदैव
विदुर
देवा न दानवा, न देवता समझ सकते हैं न दानव समझ सकते हैं। सर्व इतद वितम मन्य आप जो कुछ बताया जन्मा मदद से कैसे सब कुछ मन्य मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूँ सब कुछ व्हाट एवर यू से आई मीन दिस इज द रियल सरेंडर। एक्चुअली इसका सरेंडर का अर्थ क्या है प्रभुपाद आई थिंक वन ऑफ द लेक्चर प्रभुपाद सेड ये सरेंडर का अर्थ होता है कि कृष्ण से दिस इज गुड, कृष्ण कहते हैं ये सही है तो स्वीकार करते, कृष्ण कहते हैं गलत है तो उसका त्याग कर देते, इसमें कोई सोचने का भी प्रश्न ही नहीं है कुछ सिंपल। इसको बाकी तो कोई भी कह सकता है कि हाँ प्रभु आप भगवान जो बोलते मैं उसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक्सेप्ट करने का अर्थ होता है उसको फॉलो भी करना। एक्सेप्ट भगवान कहते हैं कि माम शरणम व्रज मेरी शरण में आओ सब कुछ छोड़ करके, सो दैट इज व्हाट एवर यू आर स्पीकिंग आई एक्सेप्ट, दिस इज द वे ऑफ सरेंडर। प्रभुपाद कहे टू बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, भगवान के प्रतिनिधि बनना कोई बहुत मुश्किल नहीं है अगर व्यक्ति केवल सिंसियर बन जाए अर्जुन की तरह। और अर्जुन जैसे कहा कि माय डियर केशव व्हाट एवर यू आर स्पीकिंग आई एक्सेप्ट इन ऑल इन टोटल विदाउट एनी रिफॉर्मेशन, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं बिना किसी रिफॉर्मेशन पर बिना किसी बदलाव से, कुछ तोड़ मरोड़ कुछ नहीं, जो आप बताया उसको मैं 100% स्वीकार करता हूं। देन योर प्रतिनिधि भगवान के प्रतिनिधि हमारा गए गुरु हया तारे देश जय दाख तारे कहा कृष्णा उपदेश। तो इस तरह से ये तरीका है वास्तव में सरेंडर होने का। यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं स्कॉलरशिप कैन नॉट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कृष्णा, ऐसा कुछ सब बड़े बड़े स्कॉलर्स प्रभुपाद फर्स्ट सेकंड लाइन में शायद बोल रहे तात्पर्य में क्या लिखा है।
यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते, जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथा कथित विद्वानों का क्या कहना।
तो इसके विषय में आपका क्या मानना है, आप लोग क्या कह रहे हो इसके विषय में? प्रभुपाद कह रहे हैं कि आधुनिक तथा कथित विद्वान कैसे समझ पाएंगे जब देवता ही नहीं समझ सकते। तो
ब्रह्मा जी ने जब वो उड़ाए कहिए और बछड़े छुराए थे बाल बालों को बराबर, और तब उनको जो अपनी माया का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब भगवान ने अपनी माया दिखाई तो और वो दंग रह गए कि उन्होंने घोषित कर दिया कि मैं कृष्ण को नहीं जानता। तो अगर ब्रह्मा जी जो पहले जीव है वही ये भगवान के बारे में ये कह रहे हैं तो फिर हमारी क्या औकात है।
अच्छा यही बात एक्चुअली अर्जुन भी यही बात बताया अनुवाद में। यस फिर और कोई भक्त विद्वान विद्वत्ता से भगवान को नहीं समझ सकते तो फिर हम ये कोर्स क्यों करें?
ये विद्वत्ता के लिए कोर्स नहीं है।
चलो ये बात भी सही है। फिर
ये है कि जैसे हमने कहा ना उस दिन कि भगवान महान है तो कितने महान है, तो ये महानता सुन सुन के भगवान के चरणों में हमारी अटल श्रद्धा हो जाएगी।
Okay.
और वो हमारे काम है, विद्वत्ता काम नहीं है।
वेरी गुड। और कोई बहुत ज्यादा पंडित बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ता है और वेद उपनिषद पुराने सब पढ़ता है तभी भी वो तो भगवान को समझ ही नहीं सकता, यहाँ पर तो साफ मना कर दिया, तो क्या करना चाहिए? यस कमेंट।
भगवान अधोक्ष है, माने इंद्रियों से परे हैं, तो सिर्फ भगवान भगवान की कृपा से या भगवान की शुद्ध भक्ति कृपा से ही भगवान को हम समझ सकते
हैं। ये सैद्धांतिक बात है कि भगवान के भक्त की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, नहीं था नहीं। यस
उसका प्रभु जी यहाँ पे एक और चीज है कि जो जो लिखा है जो पढ़ रहे हैं वो भी तो किसी भक्त ने लिखा है, किसी भक्त ने लिखा है, तो अब उसको ये कहना कि हम केवल इसको पढ़ रहे हैं और जो भक्त है उसकी अहमियत नहीं है कोई, तो अपने आप ही कंट्राडिक्शन है।
यस ये अपने आप भी कंट्राडिक्शन है
दोनों का। तीसरी बात यह है प्रभु जी की केवल अब जैसे जैसे किसी ने एटम बम का फार्मूला बना दिया, क्रिटिकल मास यूरेनियम का लग गया लिख दिया, तो उससे एटम बम थोड़े बन जाएगा। कोई समझी सकती तो क्या एक्चुअली होता क्या है? अब वो वही कह सकता है जिसने कि काम किया।
yes.
तो बिना किसी के ज्ञान विज्ञान से एटम की बात करी केवल ज्ञान से ही विज्ञान नहीं होना चाहिए।
ये बात सही है क्योंकि देवता तक भगवान को नहीं समझ, जैसे बताया आपने बताया ब्रह्मा जी एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मा जी तो मोहित हो ही गए थे, फिर स्टेटमेंट भी डाल दिया कि मैं तो आप ब्रह्मा खुद बोल देता हूँ कि भगवान को मैं नहीं समझ सकता, और जो समझे उसको नमस्कार। यस
क्यों सीधा सिद्धांत है कभी सीमित जो है असीमित के बारे में कैसे
जा सकता, जब तक वो किसी असीमित से जुड़ी हुई चीज से सहायता ना ले
ना संपर्क में आए तब तक कैसे।
सही बात।
यस दूसरा ये कि जब तक ज्ञान का सवाल है वहां तक जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु परंपरा का जो उन्होंने कहा है कि उनको किसी ने बोला छोटा सा ही एक जबर बताया था कि वो बहुत सारे लोग उनको प्रणाम कर रहे थे, एक लड़का था उसने उनको पूछा कि आप अपने आप को क्या समझते हो, बराबर है, तो उन्होंने बोला मैं तो अपने आप को कृष्ण का दासों के दासों का दास समझता हूँ, मैं तो तुम्हारा भी दास हूँ। तो जब हमारे पास चाहे ज्ञान की कोई सीमा नहीं है लेकिन जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान होते हुए भी हम अपने अपने आप को दृढ़ांगपि जो सुनिश्चय है दासों का दास समझे तो वही हम आगे जा सकते हैं। बट विद्वता का तो कोई प्रश्न ही नहीं आता है, चाहे कितना भी विद्वान हो। गोपाल कृष्ण महाराज ने भी ऐसा ही बोला था कि मैं तो वैष्णव ही नहीं हूँ, आप अपराध अगर मेरा करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये भाव हमारे अंदर सदा रहना चाहिए कि मैं दासों का दास हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ। निम्नता जब तक नहीं आएगी भक्ति में तब तक
वो जब ये गुण विकसित नहीं होंगे तब तक कोई व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। यस सो इस तरह से इंद्र भी गलती किए थे, ब्रह्मा जी गलती किए थे, कई लोग गलती किए थे। इंद्र सोचने लगे कि ये बच्चा इसने मना कर दिया यज्ञ करने का, उसको पता नहीं कि मेरे हाथ में क्या क्या पावर है, अभी दो दिन पहले ही वायु छोड़ा था उसके पहले फैनी आया था उसके पहले कैटरीना आया था, क्या क्या आया था, किसी ने मुझे भेजा था आज लाइन एक के बाद तो इतने सारे साइक्लोन आते हैं। तो इंद्र बोले इसको कृष्ण को पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब कृष्ण सोचने लगे कि अब इसको क्या कहा जाए, ठीक है करो जो कर सकते हो कर लो। तो जब भगवान को पता पड़ गया तो जोर जोर करके नंद महाराज को बोलने लगे अब तो इंद्र की पूजा होनी ही नहीं चाहिए। तो ठीक है बेटा ऐसा करेंगे हम इंद्र का पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन का पूजा करेंगे, तुम जैसे कहते हो वैसे आज जो कुछ बनाया है अन्नकूट उसके बदले में कल नया अन्नकूट बनाऊंगा वो गोवर्धन को लगाएंगे। ये इंद्र को बोले नहीं कल नहीं आज, और यहाँ पर जो अन्नकूट बना है यही अन्नकूट भगवान इंद्र को मत दो, जोर से चिल्ला करके बोला तो इंद्र सुनने लगे। इंद्र सुनने लगा कि ये मैं जब पहली बार ये कथा पढ़ रहा था मैं सोचा यार स्वर्ग का राजा होकर के ऐसी गलतियां करते रहते हो, मैं ऐसा सोच रहा था, छोटा था मैं, तो मैं कहा कि यार इससे तो फिर हमारे भक्त लोग अच्छे नहीं है, ये तो इतना जितना गलतियां करते हो। फिर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा कि कभी कभी इंद्र ऐसी गलती करता है फिर भी हम सबसे वो अच्छा है, हम सबसे महान है, क्योंकि भगवान की लीला में वो स्थान प्राप्त कर रहा है और साथ साथ में भगवान को क्षमा भी करते हैं, वो क्षमा भी कर, वो क्षमा मांगता भी है और क्षमा करते भी है भगवान उसको, तो इसलिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं है इंद्र। हाँ तो इस तरह से ये एग्जाम्पल बता रहे कि देवता नहीं समझ सकते। सो ब्रह्मा हो चाहे शिव जी या इंद्र या कोई चंद्र वरुण, कोई ये भगवान को समझ नहीं सकते। पहले भी भगवान ने बता दिया राम आदेव ही देवाना नते विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि, भगवान ने पहले भी बोल दिया कि देवता लोग मुझे समझ नहीं सकते। अर्जुन ने उसको रिपीट किया, केशव शब्द का अर्थ भी हमने आपको पहले बताया था, ब्रह्मा और शिव का जो आदि है, के का अर्थ होता है ब्रह्मा का, श का अर्थ होता है शिव, और वह जो उनके सबके आदि है, तो केशव शब्द का उपयोग किया गया है यहाँ पर भी। सो इस तरह से प्रपद बल्ले केवल कृष्ण ही किसी को पूर्ण रूप से अगर कोई समझना चाहता है तो फिर उसको भगवान की सहायता चाहिए। तो अर्जुन इसको नेक्स्ट श्लोक में कंफर्म भी करते हैं, 15 नंबर पढ़िए।
हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं।
भगवान को केवल एक ही व्यक्ति पूर्ण रूप से जान सकते, एक ही व्यक्ति कौन, स्वयं भगवान, और कोई नहीं, और कोई नहीं जान सकता भगवान को पूर्ण रूप से। जानने के लिए केवल वही व्यक्ति, क्योंकि बहुत मुश्किल है, घोड़ा कपट मानुष अति मर्त्यानि केशव, श्रीमद् भागवत में फर्स्ट कैंटो में आता है कि कृष्ण जब यहाँ पर प्रकट होते हैं तो अति मर्त्यानि अर्थात ऐसे ऐसे कार्य करते हैं मनुष्य होकर के भी, तो फिर भी घूढ़ कपट मनुष्य, बिल्कुल मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं और कई बार ऐसी लीला करते हैं कि साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं सकते। जैसे ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, ब्रह्मा जी सोचे कि किसी का जूठा खा लेता है, तो ठीक है छोटा मोटा लीला मक्खन चोरी किया तो ठीक है, लेकिन जूठा खा लेता है ये कैसे स्वीकार करे, बंदरों को खिला रहा है अब ये कैसे, अरे बंदर को खिला रहा है तो छोड़ो बंदर की पूंछ खींचता है अब ये कैसे कोई भला स्वीकार करे, अरे बंदर की पूंछ तो ठीक है आकाश में पक्षी उड़ता है तो उस पक्षी की परछाई को पकड़ना जोड़ता है उसको भला कैसे कोई स्वीकार करे, वो कैसे कोई मान ले, वो बंदर दांत दिखाता है ये भी दांत दिखाता है और कोई पक्षी आवाज करता है ये भी आवाज करता है, ये सब कैसे मान ले, ये भगवान है कैसे मान ले सब, ये सब सुनने में ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं। सो यहाँ पर कहा गया है कि केवल भगवान जिस पर कृपा करे वही व्यक्ति, यू अलोन नो योर सेल्फ योर ओन इंटरनल पोटेंसी, अपनी अपनी शक्ति आप किसी को दे सकते हो तभी वो समझ सकता है, अन्यथा नहीं। सो नाउ अर्जुन रिक्वेस्ट करते, 16 नंबर पढ़िए।
कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं।
अब बताया कि मुझे ऐश्वर्य बताइए, प्रभु आपने कहा था ना छठे अध्याय में अंत में योगी नाम सर्वेशा मत गतेन अंतरात्मना, मेरे मन जिसका मन तो लगा हुआ है तो अर्जुन ने उसको अपनी डायरी में नोट करके रखा था कि छठे अध्याय के अंत में भगवान ने ऐसा बोला था। और फिर साथ में अध्याय की शुरुआत से भी होता है शुरू कर दिया मई आवेश मनो ये माम मुझ में जिसका मन लगा हुआ है, तो अर्जुन फिर उसको भी नोट कर लिया। फिर नौवें अध्याय में भगवान ने बताया यो माम स्मृति नित्य सह यो माम स्मृति नित्य सह यो अनन्य चेता सतत बार बार मेरा स्मरण करता चिंता करता वो सारा नोट किया। फिर नौवें अध्याय के अंत में भगवान ने बोला मन मना अभव मत भक्तो मुझ में मन लगाते हैं, ये भी भगवान ने नोट कर लिया। फिर दसवें अध्याय में भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें मेरा ऐश्वर्य बताता हूँ उसको फिर से सुनो ताकि तुम्हारा मन उसमें लगे, तो अर्जुन ने उसको भी नोट कर लिया। फिर भगवान अर्जुन सोचा कि अभी ऐश्वर्य बताएंगे बताओ, तो भगवान ने बताया ओम अहम सर्वस्व प्रभु मत्तर सर्वम प्रभु, फिर क्या हुआ हो गया? तो अर्जुन बोली नहीं इसी से काम नहीं चलेगा, आगे बताओ डिटेल में आपका ऐश्वर्य जानने की इच्छा है आप बताइए, वो अहम एक श्लोक में बता दिया आपने तो कि मैं सबका आदि हूँ जान ले, नहीं 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 मुझे जानना चाहता हूँ। तो अब नेक्स्ट श्लोक पढ़िए 17 नंबर।
हे कृष्ण हे परम योगी मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं, हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए।
हाँ अभी ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है अर्जुन के द्वारा ये प्रश्न अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन ने तो पहले ही बोल दिया परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, अर्जुन ने सब स्वीकार कर लिया। लेकिन ये प्रश्न दूसरों के लिए पूछा जा रहा है, हमारे लिए पूछा जा रहा है मैं आपका चिंतन कैसे करूं, आपने कहा ना ऑलवेज थिंक ऑफ मी हाउ डू आई थिंक ऑफ यू कॉन्स्टेंटली हाउ शैल आई नो यू, आपके अलग अलग स्वरूपों का विस्तार से मुझे महिमा समझाए आप परमेश्वर हो। तो ये भगवान सूर्य की कौन क्या क्या दिखाओ बैटरी का कौन सा बताओ। सो अर्जुन वास्तव में ये उन लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने में अभी भी कच्चे हैं या नहीं उसमें जुड़े हुए, तो फिर भगवान अपनी विभूति अपने ऐश्वर्य का महिमा बताते ताकि इनडायरेक्टली आप भगवान को समझ सकते हो। जैसे कई बार आप देखते हो जैसे समझ लो कि क्या किसी के पास ऐसा कोई पिछले 5 साल में ऐसा कोई आपको याद है जो आपकी दृष्टि से प्राकृतिक सौंदर्य देखा होगा, प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति का सौंदर्य यस कहाँ पर देखा, जगह का नाम बता दो बस।
चेक स्विट्जरलैंड बोलते
हैं उसको, चेक स्विट्जरलैंड वहां पर आपने प्राकृतिक सौंदर्य देखा था और किसी वक्त में कौन सी जगह
चाइना बॉर्डर पे पिंचिनजंगा बेस के पास में वहाँ पे ऐसा एक सरोवर है जिसके अंदर न तो कोई कीड़ा है कुछ नहीं है बिल्कुल, और चारों तरफ हाँ इतना हाइट पे है कि वहाँ कोई पैदा नहीं होता कुछ भी नहीं होता। ऐसा है आज पड़ोस मतलब ये समझिए कि वहाँ पे करीब 2 महीने के लिए वो फूल उगते हैं, पौधे बनेंगे उगेंगे और फूल होने के बाद खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। और इतने बड़े बड़े फूल बन जाते हैं वो ब्रह्म कमल जैसे इनको बोलते हैं, बड़े बड़े फूल बन जाते हैं लेकिन कोई वो नहीं आता, वहाँ कोई कीड़ा नहीं आता।
अच्छा ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मुश्किल है। यस ये कहीं पर भी मैं तो जस्ट ऐसे ही रैंडमली मन में आया पूछ लिया। यस
नेपाल
अपना नेपाल में देखा था ओके, और कोई बात हो सकता है अहमदाबाद में भी हो
सिनाजी में देखा था
वहाँ को मिलते नहीं पूरा आसमान में उसमें सब सितारे
वो देख के एक बार ऐसा हुआ था
यस आकर्षित हो जाता है उससे। और कोई भक्त शेयर करना चाहता है कुछ भी एनीथिंग अगर प्राकृतिक सौंदर्य नहीं तो कोई अद्भुत चीज
प्राकृतिक
प्लेन में चल रहा था तो मैंने बादलों को नीचे देखा और सूरज और आसमान एकदम स्वच्छ था, तो तुरंत वो एक्सपीरियंस याद आ गया। हम लोग ये सोचते हैं कि बादल ने सूरज को ढक दिया, लेकिन बादल की औकात ही कहाँ है, बादल तो नीचे है, हम विमान से जा रहे हैं, और सूरज का प्रकाश एकदम स्वच्छ आ रहा है, आसमान दिख रहा है, तो ये एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस,
अद्भुत अद्भुत अनुभव। यस सो मैं केवल आपको ये छोटा एक्सरसाइज इसलिए किया, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ऐसे ही मैं एक्सरसाइज किया कि कोई अद्भुत वस्तु को देख करके व्यक्ति उसको भगवान के साथ कोरिलेट करता है, हे कृष्णा देखो आपका कल पानी का स्वाद मैं हूँ आज सुबह।
भक्ति
किराम
चल रहा है, वो भगवान
जी
से कोऑर्डिनेट करता है,
ये सही बात है,
दूसरे लोग तो
नहीं समझ सकते। ये सही बात है, जैसे आज द्वादश है ना, तो आज सुबह एक डिवोटी का मैसेज आया था मुझ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग टाइम में, वो ब्रेकफास्ट वाले टाइम में 6 बजे के बाद, तो मैंने उनको सीधा रिप्लाई इसी तरह से लिखा, हे कृष्णा यू आर द टेस्ट ऑफ वाटर। I replied him. Then I say कि शायद आप अभी ये अनुभव कर रहे होंगे। तो यस तो ये कहने का तात्पर्य कि जो भी अद्भुत चीज है वो सबका जो स्रोत है वो भगवान है। Now प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं the superior devotee is concerned not only for his own understanding but for the understanding of all mankind. So Arjuna, out of his mercy, because he is a Vaishnava, a devotee, is opening for the common man the understanding of the all pervasiveness of the Supreme Lord. Paramatma kis tarah se sab cheezon mein vyapt hai aur kis tarah se Bhagwan ki shaktiyan सब जगह विद्यमान है, इसको अर्जुन प्रस्तुत करना चाहते। 18
हे जनार्दन, आप उन्होंने विस्तार से अपना ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्दामृत को चखना चाहता हूँ।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अर्जुन ने जब ऐसा कहा तो भगवान ने सोचा अभी अभी तो बताया, अब सर उससे प्रभु उससे काम नहीं भरा गया, अभी अभी तो 8वें श्लोक में तो बताया, 5 श्लोक पहले, 6 श्लोक पहले, चतुर्श्लोक 10 श्लोक पहले, अभी तो बताया, तो इससे बता तो दिया एक बार कि मैं सबका आदि हूँ। लेकिन अर्जुन ने इसका उत्तर इस तरह से दिया होगा कि हे कृष्णा मुझे विस्तरेण का अर्थ है हे जनार्दन, आप मुझे इसको करके इसको विस्तार करके बताइए, क्योंकि आपके मुख से जो निकल रहा है अमृत उसको जैसे मैं अपनी जीवा से चख रहा हूँ, सुप्तान कर रहा हूँ, बड़ा मुझे बड़ा मधुर लग रहा है सुनने में, और इसके लिए मुझे आपसे अधिक जानने के विषय में जिज्ञासा है, लेकिन अभी जिज्ञासा में आपको आदेश तो नहीं कर सकता, इसलिए आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आप कृपा करके मुझे अपने विषय में अधिक बताइए। तो जैसे मान लो कि अर्जुन के कान उसकी जीवा बन करके अमृत को चख रहे हो, सुनाओ कृष्ण उवाच, भगवान उवाच, पढ़िए।
श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है।
हाँ। तो भगवान ने तुरंत बता दिया, जैसे अर्जुन ने कहा तो भगवान तुरंत बोल दिया, या यस हंता और श्योर वाई नॉट, जरूर भगवान ने कहा, मैं मेरा ऐश्वर्य तुम्हें बताऊंगा, लेकिन सब तो बता नहीं पाऊंगा, अभी सारे ऐश्वर्य गिनने जाऊंगा तो फिर
युद्ध भी तो करवाना है,
युद्ध भी करवाना है, फिर गीता का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कोई कोर्स भी नहीं करेगा आगे जाके,
कोई गीता लेगा भी नहीं,
गीता खरीदेगा भी नहीं, आपको मैराथन में दिक्कत आएगी भक्तों को बाद में। तो बोले इसलिए इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते अर्जुन, इसको उनके भक्तों का भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि पिछले दो श्लोक में तुमने भी भक्तों का ही विचार किया था और लोगों का। तो मैं आई ऑल्सो थिंक ऑफ डिवोटीज। तो कृष्ण ने कहा कि सब तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मुख्य मुख्य है, जो प्रोमिनेंट है, उसको मैं तुम्हें बताता हूँ मुख्य मुख्य। और वो भी कैसे बताया, मीन्स ऐसा नहीं कि भगवान ने एक डायरी खोला या लिस्ट खोला कि अब देखो मेरा मुख्य मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं, एकदम से रैंडमली जो मन में आया सीधा ऐसे ही बताने लगे, कुछ बता दिया सैंपल के रूप में, फिर बोल दिया एटसेट्रा इत्यादि, ऐसे इस तरह से बताया। इसलिए ये नहीं समझना कि केवल इतना ही ऐश्वर्य है,
अनंत है।
हाँ इसलिए अनंत है, बिल्कुल अनंत है, इसको आप इस ब्रह्मांड के ही आप पहुंच नहीं पाओगे, अगले ब्रह्मांड की तो बात ही छोड़,
अपने जो गंगा जी वाला ब्रह्मांड है,
हाँ इस ब्रह्मांड में भी हम उनके पार, उनके गुणों को पार नहीं पाएंगे। सो इसलिए भगवान बहुत खुश होकर के बोले श्योर मैं तुम्हें सब बताता हूँ, आई मीन मुख्य मुख्य सब बताता हूँ। एक्चुअली इनके माध्यम से मैं भगवान को चिंतन करने में सहायता होती है, भगवान के चिंतन में सहायता करने के लिए ऐश्वर्य बताए गए। सो भगवान के भक्त क्या है कि वो निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहते ऑल द टाइम, इसलिए वो सब कुछ देखे। एक बार माधवेंद्रपुरी घने बादल को देखते थे तो उनको लगता था, वो तुरंत उसको देख करके बोलते नहीं थे कुछ, सीधा जमीन पर लोटपोट हो जाते थे, कोई कह दे इनको क्या हो गया, तो उनके कोई शिष्य या कोई उनका सहयोग बताया, वो बादल को देख लिया उन्होंने, बादल का कलर कृष्ण का याद करा दिया, तो श्याम तो उनको अपना होश खो बैठे, ऐसा प्रेम हृदय में था माधवेंद्रपुरी के हृदय में। ऐसे सब जगह से कृष्ण, एक बार प्रभुपाद हाईवे से जा रहे थे, कार में से किसी होटल का नाम पड़ा, तो होटल का नाम था स्टार्टिंग वाला सी से, तो प्रभुपाद ने उसको पूरा नहीं पढ़ा, ऐसे पूछ लिया क्या चिंतामणि होटल है ये, तो भक्त तो सोच रहे यहाँ चिंतामणि कहाँ से आएगा, ये विदेश में तो ऐसे नाम मिलेंगे नहीं आपको कहीं पर भी, इंडिया में आपको मिल जाएगा सब जनों आशीर्वाद सर्वोदय सब मिल जाएगा, उधर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर कुछ भक्तों का प्रभाव, आपका आध्यात्मिक मन में विचार आध्यात्मिक इतना तीव्र है कि आपको सब जगह कृष्ण मिलते, प्रेमान जनच्छुरित भक्ति विलोचन है ना, भगवान के भक्तों की आंखें प्रेम के अंजन से उसको अंजन किया होता है, प्रेमांजन से प्रेम से अंजन किया होता है, इसलिए उनको सब जगह कृष्ण का हाथ दिखता है, स्थावर जंगम में देखे ना देखे तार में, सब जगह उनको कृष्ण का हाथ दिखाई देता है, सब जगह उनको कृष्ण का अंश दिखाई देता है, यही उनका दृष्टि है, इसी दृष्टि से वो सब कुछ देखते हैं, सारी घटना को, सारे लोगों को, सारी वस्तुओं को, सबको इस दृष्टि से देखते हैं, सब जगह वो कृष्ण को दर्शन करते। जैसे उद्धव एक बार गए थे वृंदावन में, उद्धव क्यारी करके एक जगह है नंदगांव और बरसाना के बीच में, एक ओपन जगह है खेत, वो खेत के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, आपको शायद देखा होगा, उद्धव क्यारी करके जगह है, खुला खेत है, वो स्थान है जहां पर उद्धव जी ने गोपियों को संदेश दिया था, वो स्थान है, खुले खेत में रोड टच है। तो उद्धव ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण उद्धव गीत आता है भ्रमर गीत, तो भ्रमर गीत में गोपियां और राधा सब कहते हैं हमारी समस्या देखो, हम कृष्ण को भूलना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते कृष्ण को भूलने के लिए और भूल ही नहीं पाते, अब देखो पूरा उल्टा हमारी समस्या है, हम कृष्ण को याद करना चाहते हैं हमेशा, चिंतन करना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते बार बार, हमें प्रॉब्लम होती है, हम याद कर हो मुझे तो कृष्ण को याद करना था, हम भूल जाते, और गोपियों का पूरा उल्टा है, वो भूलना चाहते हैं कृष्ण को, जब वो भूल ही नहीं पाते, हालांकि वो भूलना नहीं चाहते, लेकिन ये कहते हैं केवल कि हम कृष्ण को भूलना चाहते हैं। और चलो और कोई बात करे क्या, बार बार एक ही विषय पे बात करते रहते हैं, हमेशा कृष्ण की ही बात करते रहते, कुछ और बात करे। हाँ हाँ सही बात है, और कोई बात करनी चाहिए, और जैसे ही बात शुरू करते हैं घूम फिर के वापिस कृष्ण की ही गुणगान कर दो, तो गोपियां कृष्ण को छोड़कर को कुछ बात ही नहीं कर पाते। इसलिए भक्त लोग इस प्रकार से निरंतर भगवान का ही चिंतन करना चाहते हैं। अब आने वाले श्लोकों में भगवान अपना ऐश्वर्य बताते हैं, तो आप पढ़िए एक एक श्लोक, और मैं आवश्यकता होगी तो एक एक श्लोक पर बताऊंगा।
हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ।
21 श्लोकों में 21 आने वाले 21 श्लोकों में भगवान अपना विभूति बताते हैं। ये श्लोक के बाद और 20 श्लोक, तो ये अपना विभूति भगवान बताता है, और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पहले बता दिया। क्या है सबसे महत्वपूर्ण? मैं ही परमात्मा हूँ, सबके अंदर विराजमान हूँ, तो ये सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद फिर बाकी सब कहते हैं, ये मूल ये है, मैं सब कुछ मुझसे सब सबके अंदर मेरा निवास है। और फिर कहा, आई एम बिगिनिंग मिडल एंड एंड ऑफ ऑल बींग्स, सबका आदि मध्य और अंत मैं हूँ सब जीवों का, ये मुख्य बात है। तो ये भगवान ने पहले बता दिया। और फिर आने वाले श्लोकों में भगवान अभी एक एक करके बताएंगे, तो अभी कैसा, पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जब भगवान ऐसा कहते हो कि दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम प्रहलाद की मूर्ति मंदिर में इंस्टॉल करके उनकी पूजा शुरू कर दे। क्यों? दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ, फिर पशु प्राणियों में सिंह मैं हूँ, भगवान है शेर, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप शेर के पास जाकर के सीधा आप नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम और प्रणाम करना शुरू कर, इस तरह से ये इसका अर्थ नहीं है। ये समझने की बात है, हर एक श्लोक में आएगा, इसमें ये मैं हूँ, इसमें वो मैं हूँ, पांडव में अर्जुन मैं हूँ, ऐसा भी भगवान कहेंगे। अब पांडव में अर्जुन कृष्ण है, तो इसका अर्थ है कि क्या ये कृष्ण का ही रूप है?
भगवान और उनकी शक्ति जो है उनका ही डिस्क्रिप्शन है।
हाँ, लेकिन भगवान जब ये कहते हैं कि यस,
मतलब सभी चीजों में जो श्रेष्ठ है अलग श्रेणियों में, वो भगवान का,
यस, इसको विभूति मत्सत्वम, विभूति है अर्थात जो सब में जो उत्तम वस्तु होती है उसमें मैंने अपनी स्पेशल शक्ति डाली है, इसलिए वो सबसे उत्तम है।
सारे जो हेड है
अपने अपने ग्रुप के जो हेड है, चीफ है। अपने अपने ग्रुप के जो चीफ है वो भगवान की एक शक्ति मात्र अंश से, एक अंश मात्र से संभव है, ये भगवान बताना चाहते हैं।
भगवान की शक्ति है, भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान नहीं।
फॉर एग्जाम्पल राजा, तो राजा भगवान तो नहीं है, लेकिन वो राजा के पास वो शक्ति है कि जो किसी के पास नहीं है, इसलिए भगवान के द्वारा उसको विशेष शक्ति प्रदान की गई है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो जो शक्ति है वो तो ब्रह्मा जी के सामने तो कुछ भी नहीं है, भगवान ने ब्रह्मा जी को पूरा ब्रह्मांड का सर्जन का शक्ति दिया है, तो एक राजा की शक्ति कुछ भी नहीं है, लेकिन उस उनके ग्रुप में इज द चीफ, इसलिए वो विभूति,
उस राज्य का वही कुछ
वो मुखिया है, इसलिए वो भगवान का विशेष प्रतिनिधि माना जाता है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो आपका आध्यात्मिक गुरु बन जाते, नहीं, समझने का केवल बात यही है, हु इज द बेस्ट, जो सबसे उत्तम कौन है, अगर जो भी उत्तम है वो मेरे कारण है, अपने आप से उत्तम नहीं है, मेरे कारण वो उत्तम है, इस हर एक चीजों में, पर्वतों में हिमालय में हूँ, तो हिमालय अर्थात हिमालय भगवान ऐसा नहीं है, लेकिन उत्तम हिमालय है वो मेरे कारण है, अपने आप स्वतंत्र रूप से वो हिमालय का कोई वैल्यू नहीं है, उसको मैंने हिमालय बनाया तब वो महान हुआ, ये कहने का तात्पर्य है।
ये आपने बताया बहुत इम्पोर्टेंट चीज मुझे अभी लगा, क्योंकि एक दो बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि कोई जो नए भक्त है वो बता रहे थे कि भगवान तो बता रहे कि मैं छंदों में गायत्री हूँ, जो गायत्री मंत्र करते हैं, तो इट वॉज बहुत बहुत पहले, तो मैंने कुछ प्रयास किया था, मगर अभी आप जो बता रहे हैं उनको समझाने के लिए वो ये एकदम पर्याप्त एकदम परफेक्ट
सबसे
श्रेष्ठ है उसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि वो मेरी शक्ति से ही सर्वश्रेष्ठ है
yes.
और उसमें समझ लो कि इनमें ये श्रेष्ठ है तो हम कितने श्रेष्ठ हो
गए yes.
इनडायरेक्टली
और वो स्वतंत्र भी नहीं है, मेरे कारण श्रेष्ठ है, अपने आप से नहीं है। दूसरा कि मेरे एक अंश मात्र से अगर इतना सब हो जाता है तो मेरे पूर्ण शक्ति कितनी होगी, तो ये बहुत सारी चीजें है इसके विषय में। तो नाउ भगवान शुरू करते हैं आदित्य नाम बताइए।
मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मृतों में मरीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा।
तो आदित्य में विष्णु, जो आदित्य के जितने भी बेटे हुए उसमें भगवान विष्णु आदित्य के बेटे माने जाते हैं, अर्थात जैसे उपेंद्र थे वो विष्णु का अवतार है। आदित्य में विष्णु में हूँ, सूर्य का प्रकाश में हूँ, है ना। तो सूर्य जो है आई एम ऑफ लाइट आई एम रेडिएंट सन, अर्थात सभी प्रकाशमान वस्तुएं है उसमें सूर्य, यू नो आपकी हेलोजन वगैरह कुछ काम नहीं करेगी उसके बाद। तो सूर्य एक ही बल्ब डाल दिया ब्रह्मांड के अंदर तो पूरा ब्रह्मांड में रोशनी फैल गई। मरुतों में मरीची और चंद्र नक्षत्रों में चंद्रमा में हूँ। अमोंग द स्टार्स आई एम द मून, अर्थात चंद्र को भी स्टार की साथ उसकी तुलना की गई है। मून इज नॉट देर नॉट सूर्य एक ही है। फिर वेदों में
सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतक हूँ।
यस, यहाँ पर कहा है वेदास में सामवेद। सामवेद जनरली गाने को कहा जाता है, वो गाया जाता है सामवेद। सामवेद में जो श्लोक है उसको गायंती यम सामगा,
भगवान जी की महिमा का
गान है वो, गायन जी हम सामगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि जो हम कीर्तन करते हैं वो वास्तव में एक रूप से सामवेद का ही रूप है, क्योंकि हम गान करते कृष्ण का कीर्तन महिमा गान करते तो सामवेद का ही रूप है। तो इसलिए डॉक्टर पटेल से जब बात कर रहे थे बॉम्बे में तब प्रभुपाद ने कहा कि कीर्तन इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम सामवेद। तो वेदों में इसलिए भगवान कहते हैं वेदों में सामवेद मैं हूँ। देवताओं में इंद्र इज द बेस्ट, सब में वो ही श्रेष्ठ है। इंद्रियों में मन, क्योंकि मन ऐसा है कि उसको बहुत सूक्ष्म है और वो छठा इंद्रिया माना जाता है, मना षष्ठान इंद्रिया, मन जो है वो इंद्रिय है, वो मन के सहित इंद्रिया, तो मन को इंद्रियों में स्थान पाया गया है, लेकिन सबसे उत्तम इंद्रिया मानी जाती है क्योंकि उसको तो देखना भी मुश्किल है।
पावरफुल
सेंसेस, सबसे पावरफुल
इंद्रिय मन का एक्सटेंशन तो नहीं है, मन का विस्तार तो नहीं है,
मन सबका ऊपर है। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल दिए कि अगर घोड़े इंद्रियां है तो लगाम है उसकी मन, इस तरह से तो लगाम उस घोड़े को कंट्रोल करते हैं। सो एंड द लिविंग बींग्स आई एम द लिविंग फोर्स, चेतना मैं हूँ सब में, उसके बिना कुछ नहीं होता चेतना के बिना। यस फर्दर,
मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ।
हाँ, तो ऐसे तो कई रुद्र है, एकादश रुद्र है, और एकादश रुद्र में जो शिव है भगवान कहते हैं वो मैं हूँ, इज द बेस्ट शिव। टिपिकल जो लॉर्ड शिव है ना वो। फिर यक्ष और राक्षसों में कुबेर वो मैं हूँ, कुबेर सबसे अच्छा है, मीन्स वो विकृत नहीं है, अच्छा माना गया है, बेस्ट इन ऑल द राक्षसस। ऑफ द वसुस आई एम फायर, वसुओं में अग्नि मैं हूँ और पर्वतों में मेरु। यहाँ पर पर्वत जो है ना वो अलग है और हिमालय का अलग है। प्रॉपर विल मेंशन फॉर दैट माउंटेन आई एम द मेरु, मेरु माउंटेन भगवान कहते हैं वो मेरा आविष्कार है। फिर आगे
यक्ष और राक्षस में क्या
है? बहुत कम अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यक्ष जो होते हैं वो जहां तक मैं मानता हूं उनके पास शक्ति वैसी होती है राक्षस जैसी सब, लेकिन वो भयानक नहीं दिखते, दे डोंट लुक सो अगली एंड सो बैड। यक्ष इस पर राक्षस भयानक दिख सकते हैं, उनका उनको देखना ही बहुत एक प्रकार से भयानक हो सकता है। जैसे रावण राक्षस था, कुबेर का छोटा भाई वो राक्षस था, लेकिन यक्षों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ था, फिर यक्ष के साथ प्रहलाद जी का युद्ध हुआ था, तो इन सब का यक्षों के, लेकिन ये यक्ष मायावी होते हैं, उनके सारी माया होती है, सब प्रकार की माया, ऐसी माया कि आप चिंता भी नहीं, आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, ऐसी माया होती है, बट मोर ऑर लेस आर सेम, आई मीन आई एम नॉट वेरी स्पेशल ऑन दैट, बट आई व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग, मैं इसके विषय में रिसर्च नहीं किया कभी। फिर फर्दर आगे का श्लोक,
वनवास में जब पांडव थे तब यक्ष ने
यक्ष प्रश्न, यक्ष कुंड है ना, काम्य वन है, यस।
मैं समस्त वृक्षों में अश्व वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ।
टेक्स्ट नंबर
24।
हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, मैं ही समस्त सेनायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में शंभु हूँ।
तो बृहस्पति जो है वो सारे जो स्वेजी से उसमें सबसे उत्तम है, मुख्य है, क्योंकि इंद्र का पृष्ठ, इंद्र का गुरु है बृहस्पति, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ है। और सेनापति में कार्तिकेय जैसे सेनापति कोई भी नहीं हो सकता, सुपर सेनापति कार्तिकेय। और वाटर बॉडीज में जल में हूँ, समुन्दर, समुन्दर है ना, समुन्दर कितना धाक, समुद्र के पास बैठने से भी आपको भगवान का अनुभव होता है, क्योंकि तो इतना विशाल जल राशि को देखते हो, अब उसको देख के सोच लगे कितना जल एक साथ, इतना सारा जल।
जी मैं अपने पिताजी को जगन्नाथपुरी ले गया तो वहाँ पे समुद्र देखते ही वो बोले देखो ये जिंदा देवता है।
Yes, because you cannot see such things. उसको देखते हैं, I mean, आजकल तो बहुत बड़ी बात नहीं है समुद्र देखना, लेकिन प्राचीन समय में जब पैदल चलना होता था ना, तो कभी कभी तो समुद्र लाइफ टाइम देखते ही नहीं कोई, कुछ लोग तो पता ही नहीं समुद्र कैसा होता है। प्रभुपाद एक बार जा रहे थे समुद्र के पास और प्रभुपाद ने कहा कि समुद्र जो है वो इतना पीसफुल क्यों है, तो क्या क्या उत्तर दिया प्रभुपाद?
समुद्र बहुत डीप होता है।
यस, समुद्र इसलिए शांत है क्योंकि वो गहरा है, इसलिए शांत। प्रभुपाद इसकी तुलना एक्चुअली वैष्णव के साथ कर रहे थे कि वैष्णव जितना अधिक गहरा होता है, अर्थात जितना अधिक परिपक्व होता है, उतना अधिक बुद्धिमान, आई मीन उतना अधिक शांत होता है, उसको बहुत आवश्यक है। इसलिए जो जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ता है अपनी भक्ति में, वैसे वैसे उसका हृदय विशाल होता जाता है, इतना विशाल हो जाए कि सारा विश्व उसमें समा जाए, इतना बड़ा हृदय होता है उसका। क्षमा जैसी बात तो उनके बहुत तुच्छ है, क्षमा किसी को क्षमा करना ये तो बहुत तुच्छ बात है, वो तो ऐसे ही हो जाता है क्षमा, ये भक्त का इतना विशाल हृदय हो जाता है। तो ये प्रभुपाद ये कह रहे हैं, तो समुन्दर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज समुन्दर ही है वास्तव में जो इतनी सारी नदियां आने के बाद भी चुप रहता है, कुछ नहीं एजिटेट नहीं होता, अपनी सीमा लांघता नहीं है, इतना सब होने के बाद भी, इतने इंद्रियों के इतने सारे वेग आने के बाद भी भगवान का जो भक्त होता है वो अपनी सीमा को लांघता नहीं है कभी। तो और इतना ही नहीं, ये नदियों का पानी लेकर के उसको एवोपोरेट करके उसको फिर वापिस बरसाता है सब जगह, तो बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये समुद्र सबसे श्रेष्ठ है। फिर आगे पढ़िए।
मैं महर्षि प्रभु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम करके पंचम तथा समस्त अचलों में हिमालय
हूँ। यस, सो यहाँ पर भगवान ने ओम शब्द का महत्व बताया है कि ऑन द ट्रांसेंडेंटल ओम। तो ओम जो है उसका तो मूल जो आप देखोगे स्टार्टिंग, वो ब्रह्मा जी को भगवान ने सबसे पहले ओम शब्द बताया था और उसका उत्पत्ति हुआ था भगवान की फ्लूट में से। और जो सबसे ओम शब्द जो निकला था उसमें अ उ म तीन आता है, तो अ उ म का आचार्य हमारे उसका वर्णन करते हैं संबंध विधेय और प्रयोजन अ उ म। तो अ से मदन मोहन, उ से गोविंद और म से गोपीनाथ, ये तीन प्रसिद्ध जो देव है भगवान का रूप है उसका चिंतन किया जाता है औ ओम से। हालांकि भौतिकवादी व्यक्ति ओम को समझ ही नहीं सकते, वो लोग ओम को ओम ओम शांति ओम शांति करते रहते, लेकिन उनको नहीं पता कि ओम शब्द का दूसरा एक अर्थ होता है राधा रानी, कृष्ण और जीव। एक और एक इसका अर्थ, बहुत सारे अर्थ अलग अलग आचरण बताए हैं। अभिधेय और प्रयोजन, संबंध अभिधेय और प्रयोजन, गोविंद और गोपीनाथ, संबंध मदन मोहन गोविंद अभिधेय और गोपीनाथ। तो इस तरह से ओम का भगवान कहते हैं वो सब, उसके बिना कोई मंत्र शुरू ही नहीं होता, कोई संकल्प भी पूर्ण नहीं होता, कोई बीज मंत्र भी काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करेगा ओम के बिना। फिर यज्ञ में जप यज्ञ मैं हूँ भगवान कहते, चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम का जप करना ये सबसे उत्तम है। विशेष करके प्रभुपाद कहते तात्पर्य में ऑफ ऑल सैक्रिफाइस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इज द प्योरेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा। ये भगवान के दिव्य नाम का साक्षात मूर्ति है, साक्षात स्वयं भगवान है। और इमूवेबल थिंग्स में, वहां पर वो मेरु पर्वत में था और ये अचलों में हिमालय में हूँ, जो हिला नहीं सकते उसमें हिमालय में हूँ। तो हिमालय कितना बड़ा है किशन देव है? बहुत बड़ा है,
8,000 मीटर, 8,000।
हाँ, वो हाइट में है इस तरह से,
हाइट में तो 8,848।
हाँ, और चौड़ाई में बहुत है,
लंबाई में करीब हो गए
4,800 जो इतना बड़ा।
कहाँ से? पाकिस्तान से लेके और म्यांमार के
हैं। इतना बड़ा है भगवान कहते हो अचलों में हिमालय में,
टिकली समझो तो अरब सागर से लेके और बंगाल की खाड़ी से घूमते
हुए भगवान कहते वो मैं सच भी, गोवर्धन से कितना बड़ा होगा? हजारों गुना,
कोई कंपैरिजन नहीं,
कोई कंपैरिजन नहीं। सो अचलों में हिमालय में, फिर आगे पढ़िए 26।
मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ।
हाँ, वृक्ष में जो अश्वत्थ वृक्ष था पीपल का पेड़ जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, पीपल का पेड़ अश्वत्थ वृक्ष वो सबसे उत्तम माना जाता है, वो उसकी पूजा भी करते लोग। अश्वत्थ वृक्ष क्या बोलते उसको, दूसरा कोई नाम है गुजराती में?
पीपल
ही बोलते हैं ना,
पीपल।
और देव ऋषियों में नारद में हूँ, सेजिस अमंग द सेजिस। गंधर्व में चित्ररथ, चित्ररथ का नाम सुनकर अर्जुन खुश हो गया, अर्जुन का फ्रेंड है चित्ररथ,
उन्होंने घोड़े दिए थे
क्योंकि वो घोड़े भी दिए थे, लेकिन चित्ररथ से उन्होंने नृत्य सीखा था।
हाँ, गाना बजाना
और इंद्र ने कहा था सीख लो काम में आएगा कभी, और मैं क्षत्रिय धनुष चलाने वाला मुझे क्या काम में आएगा। थोड़े नहीं कभी काम में आएगा, सीख लो। तो सीख लिया,
आया भी काम,
आया भी ताकि काम में आया। और सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल जो सेज कपिल जो है वो मैं, यहाँ स्पष्ट रूप। तो हमारे आचार्य बताते हैं नारद का मुख्य काम क्या है, नार का अर्थ होता है, एक होता है मनुष्य और दूसरा होता है आध्यात्मिक। नार शब्द का एक अर्थ होता है, और द का अर्थ होता है देने वाला। द बोलते हैं ना वरद, वर देने वाला, यशोदा, यश देने वाला। तो यहाँ नारद, नारद का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक जो सहाय हेल्प देने वाला जो है वो नारद। अर्थात जो नारद और उनके परंपरा से जुड़े हुए जितने भी भक्त है वो सभी यही कार्य करते, सारे ब्रह्मांड में विचरण करके लोगों को आध्यात्मिकता का दान करते। ये सब नारद के फॉलोअर्स माने जाते।
नार मतलब पुरुष,
सेकंड स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी
ऑल्सो नारद,
ऑल्सो नारद। So this is a special meaning of Narada. Okay, further 27.
घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ।
आगे पढ़िए।
मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतत उत्पत्ति के कारण में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी।
जो और एक श्लोक भी पढ़ लीजिए।
अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ, मैं पितरों में अरेमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ।
तो यहाँ पर भगवान ने कई अलग अलग चीज बताई, जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज आई थी, तो उसमें से क्या निकला, अनेक चीज निकली। तो उसमें अमृत मैं हूँ, फिर ऐरावत हाथियों में श्रेष्ठ माना जाता है, मनुष्य में राजा श्रेष्ठ माना जाता है, ये भगवान ने बताया। शस्त्रों में थंडरबोल्ट भगवान ने बताया, क्योंकि ऐसा अस्त्र किसी वज्र ऐसा कोई, इससे कठोर कोई नहीं होता है। वज्र का अर्थ होता है कि जो आप अग्नि आकाश मार्ग से जो बिजली आती है ना इधर, और उससे पर्वत को तोड़ देती है। आप लोग देखा होगा कहीं, बोलते हैं बिजली गिरी ऊपर से, तो एक्चुअली वज्रपात है वास्तव में इंद्र का। तो वज्रपात है वो सबसे उत्तर स्ट्रांग माना जाता है। गायों में सुरभि जैसी गाय तो कोई हो ही नहीं सकती। और प्रोक्रिएशन अर्थात वंश बढ़ाने के लिए जो मूल तत्व की आवश्यकता होती है वो कंदर्प भगवान कहते हैं वो मैं हूं, उसके बिना ये होगा ही नहीं प्रोक्रिएशन। और सर्पंट्स में वासुकी मैं हूं, और नागों में अनंत मैं हूं। तो सांप और नाग दो आ गया अलग अलग, एक सर्प और एक नाग। तो सर्प एक मुख वाला जनरली होता है, और नाग जो होता है वो मल्टीपल हूड वाला होता है, जो जिसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको
फन,
बहुत सारी फन होती है उसको नाग बोला जाता है, और जनरली बाकी सब सर्प माने जाते हैं। वासुकी सर्प में आता है, लेकिन नाग में भगवान ने कहा मैं अनंत हूँ, उस बहुत सारी फन है नाग।
अभी अभी के टाइम पे नाग देखे जाते हैं?
वेल मेरे अनुभव में तो ऐसा कहीं सुना नहीं है कहीं पर भी कि किसी ने नाग का दर्शन किया हो। लेकिन आजकल तो गुजरात में सबको ही नाग बोल लेते, वो ऐसा एक हुड़ वाला होता है फैन वाला, उसको नाग बोल देते हैं लोग, फैन वाला। बट एनीवे दैट इज नॉट मल्टीपल फैन इज नाग, मैनी हुडेड नागास आई एम अनंता और द मैनी हुडेड नागास अमॉन्ग द एक्वेटिक्स आई एम द डेमिगॉड वरुणा, वरुण देवता ही मैं हूँ जलचरों में, वही सबको धारण करने वाले पानी में ही रहते वो हमेशा। फिर पितरों में रियमा, फिर यमराज मृत्यु का देवता वो मैं हूँ। ये यमराज जो है वो उस समय कलयुग के समय पे विदुर, ये द्वापर में विदुर जो थे वो यमराज का अवतार माना गया है। यमराज जो थे वो शाप के कारण राशि पुत्र बनने का शाप मिला था उनको, इसलिए वो विदुर बन के प्रकट हुए थे। लेकिन भगवान के भक्त और भक्तों के साथ बहुत ही फ्रेंडली है। आपको लगता है यमराज यमराज, यमराज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यमराज कोई भयाग वो आपको कुछ करेंगे, वो भक्तों के साथ बहुत फ्रेंडली है। वो भक्तों हाँ महाजन में है ना, 12 महाजन में से एक है। लेकिन यमराज से भयभीत होने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी तो वैष्णव है, वो भक्त है भगवान के। तो भक्तों को भला क्यों, जानते हैं ना, वो अपने डिपार्टमेंट के हैं, तो उनको तो पता है ना, ही नोज दैट वी आर ऑल इन सेम डायरेक्शन, कृष्ण की सेवा में हम जुड़े हुए हैं। सो इस तरह से प्रभुपाद सेड समथिंग ऑन दिस 29 नो ओके सो पढ़िए आगे। आई वी कैन जस्ट टेक हाउ मेनी श्लोका, मे बी 1 or 2, 10 बज गया। वन विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज पे नहीं की, नेक्स्ट टाइम विल फिनिश इट। पढ़िए एक श्लोक पढ़ सकते हैं, मैं दो श्लोक।
देवताओं में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़।
हाँ, तो सभी देवताओं में प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और जो सबड्यू करने वाले वो जो सबड्यूअर्स
दमन करने वालों
में काल मैं हूँ। काल भगवान बताते हैं वो मैं हूँ, सब कुछ हरण कर लेता हूँ, कुछ बाकी नहीं बचता। टाइम का इन्फ्लुएंस में टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन, राइट, वो किसी का वेट नहीं होता। टाइम इज टाइम आई एम, भगवान पहले भी एक बार बताए थे, अमॉन्ग द बीस्ट आई एम द लायन, पशुओं में लायन मैं हूँ, एंड अमॉन्ग द बर्ड्स आई एम गरुड़, पक्षियों का राज गरुड़ राज वो मैं। सो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर भगवान कहते हैं कि काल जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है। ओके सो व्हाट शैल वी डू, वी शुड स्टॉप नाउ और शुड गो फर्दर फॉर 10 मिनट्स। आई मीन यूर इज कमिंग फ्रॉम फार दूर से, 10 मिनट कर सकते हैं, दूर से आ रहे हो आप, इसलिए जस्ट सेइंग 5 मिनट्स, 5-7 मिनट लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। पढ़िए आगे।
समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ।
यहाँ पर जो राम का उपयोग बताया गया है, शस्त्रधारियों में राम, तो वो राम वो अयोध्या पर अयोध्यावासी राम नहीं है, दशरथ वंदन वाले राम नहीं है, ये परशुराम है। राम में परशुराम का बताया गया शस्त्रधारियों में, विश्वविद्या वल्लभ विद्याभूषण ने इसको स्पष्ट किया गया, क्योंकि विभूति बता रहे ना, अवतार की गणना नहीं बताई है। फिर मछलियों में शार्क सबसे महान होती है, सबसे बड़ी, तो वो मैं हूँ। और नदियों में सबसे उत्तम नदी मानी जाती है गंगा। यस पढ़िए आगे।
हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ, मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ।
तो यहाँ पर कहा गया है जो 20 नंबर के श्लोक में क्या था, आदि मध्य और अंत में सब जीवों का हूँ, और यहाँ पर बताया मैं सब सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत हूँ। यहाँ पर अलग सेम चीज है, लेकिन ये अब सब आ गया, उसमें केवल जीवों का था, अब ये सारी सृष्टि का आ गया, सारे सर्जन का। और सभी विद्याओं में आत्मा का जो ज्ञान है वो बेसिक माना जाता है, आई एम द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ द सेल्फ, वो सबसे बेसिक है, वो पहले जानेगा तभी उसकी एंट्री होगी आध्यात्मिकता में। और न्याय जो उसमें सत्य में हूँ, सब प्रकार के वितर्क ऐसे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि एक होता है वितंडावाद, एक होता है वितंडावाद और जल्प, न्याय के ये मुख्य तीन माने जाते हैं। तो इसमें न्याय का अर्थ होता है लॉजिक, लेकिन ये कृष्ण कहते हैं कि मैं जो सत्य है वो कंक्लूजन सत्य वो मैं हूँ, तो वाद मैं हूँ वाद। तो इसमें और दो चीज है, वितंडा और जल्प, ये दो होते हैं, लेकिन वितंडा और जल्प जो है वो किस तरह से है, किसको वितंडा कहते हैं, वितंडा इज
प्रतिद्वंद्वी को हराने का प्रयास,
प्रतिद्वंद्वी को हराने के प्रयास के लिए फिर कुछ भी बोल देते हैं, आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं, और जल्प किसको बोलते हैं?
प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो।
हाँ, विपक्ष का भी समर्थन हो, लेकिन वो अनफेयर आर्गुमेंट्स होती है उसमें, और कई बार विपक्ष को मूर्ख भी बनाया जाता है जल्प में। लेकिन ये वितंडा और जल्प जो है वो सत्य से लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं वाद जो है सत्य वो मैं हूँ। फिर 33
अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में मैं द्वंद समास हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ।
अके बिना तो कोई शब्द पूरा होगा ही नहीं, जब और लगेगा तभी वो उच्चारण हो पाएगा, नहीं तो आप क का उच्चारण नहीं कर सकता जब तक उसमें अ लगेगा नहीं। तो क या फिर अकार जो है वो मैं हूँ भगवान बताते हैं, और समासों में द्वंद्व मैं हूँ, इस कोई भी जो ड्यूअल चीज होती है ना द्वंद्व समास वो मैं हूँ। फिर इनएग्जॉस्टेबल टाइम वो मैं हूँ, और सृष्टाओं में सृष्टि करने वालों में ब्रह्मा जी मैं हूँ। पर ये आगे
मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री बाघ स्मृति मेधाधति तथा क्षमा हूँ।
यस सो this what is text number I'm 34 right
34
mem all devouring death I am the general principle of all that is yet to be ama acha striyon mein fir 6 jo bataye gaye hai 79 kitne hai 7 एक दो तीन सात, ये सात जो गुण बताए हैं वो कृष्ण का रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तव में वो स्त्रियों का बताए लेकिन ये पुरुषों में भी हो सकता है, और लेकिन ये भगवान के द्वारा ये उनको प्राप्त हुआ है स्त्रियों को, तो वो भगवान कहते हैं वो मेरा अंश है, मेरे कारण ये प्रकट होता है। और श्रीमद् भागवतम के कई तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मृत्यु के समय पे कृष्ण सब कुछ छीन लेते हैं, कुछ ऐसा छोड़ते भी कुछ बाकी नहीं रखते कि वो छोड़ दिया इसके लिए, कुछ नहीं छोड़ते, सब कुछ छीन लेते हैं आपका। देवताओं के लिए मृत्यु भगवान, मृत्यु के रूप में भगवान आते हैं, और भक्तों के लिए मृत्यु भगवान के रूप में आती है। आप समझे ना, भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं और मृत्यु भगवान के रूप में आती है, अलग अलग है दोनों। फिर क्योंकि काल मेरे प्रभाव में होने के कारण मेरे भक्तों की गतिविधियों को काल छू नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे प्रभाव में है, इसलिए काल का प्रभाव से भक्त परेशान नहीं होते कभी। ज्ञानी कर्म इत्यादि सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन भक्तों का आयुष्य, भक्तों का जीवन, भक्तों की गतिविधियां, ये सब भगवान के डायरेक्ट प्रोटेक्शन में होने के कारण वो प्रकृति के नियमों से बंधे हुए नहीं रहते। सो फिर टेक्स्ट नंबर 35 करते हैं, देन वी स्टॉप। ऐसे तो 42 है राइट, हाउ मेनी श्लोकस।
और छंदों में गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मार्सिस अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाए।
ऐसा कीजिए प्रभु, 42 तक का पढ़ लो, 42 तक का
पूरा। मैं छलियों में धुआं हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ, मैं वृषभवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय की आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धियों में ज्ञान हूँ, बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ तथा चर, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुर लिंग मात्र से उद्भूत हैं। किंतु हे अर्जुन, इन सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ।
भगवान ने बहुत सुंदर रूप से इसको प्रस्तुत कर दिया। सो भगवान ने बाद में कहा कि जितने भी गाने वाले छंद है उसमें बृहस्साम मैं हूँ और काव्य में गायत्री मैं हूँ। एक बार युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि को पूछा था कि पवित्र सबसे पवित्र वस्तु में कोई व्यक्ति अपने आप को सबसे पापों से मुक्त कैसे रख सकता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने उनको कहा कि अगर कोई भक्त 3 बार गायत्री का उच्चारण करता है दिन में, त्रि संध्या वो करता है, तो सब प्रकार के पाप से, सब प्रकार के अज्ञानता से, सब प्रकार से उसका मुक्ति हो जाता है, उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। लेकिन शर्त यह रहेगी कि वो गुरु के द्वारा दी गई होनी चाहिए और उसके हृदय में कोई किसी प्रकार का कचरा नहीं होना चाहिए, तब उसके गायत्री जो है वो उसका पूरा इफेक्ट दिखाएगी। सो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज को बताया था गायत्री के विषय में। और महीनों में भगवान ने बोला मार्क्सिस्ट मैं हूँ, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं कि कार्तिक एक्चुअली बोलने वाले थे भगवान, लेकिन बाद में पता पड़ा कि ये तो राधा रानी का महीना है कार्तिक, वो तो राधा रानी का महीना है, तो फिर बोला ये ठीक है मैं नंबर 2 पे आ जाता हूँ, तो फिर नंबर 2 वाला ले लिया भगवान ने, ये मेरा। तो ऐसे कुछ आचार्य कहते हैं, तो मार्क्सिस्ट महीना भगवान कहते हैं वो सबसे उत्तम मैं, और ऋतुओं में सबसे उत्तम ऋतु मानी जाती है वसंत। वसंत है कौन सा? वसंत सबसे उत्तम ऋतु, जो मार्च अप्रैल में होती है ना, सबसे उत्तम समय वो माना जाता है ऋतुओं में। फिर चीटर्स में आई एम द गैम्बलिंग ऑफ चीट्स आई एम ऑल्सो, तो ये सब कुछ भगवान, सर्व खलु एकदम ब्रह्म, सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है, इसलिए ये गैम्बल भी जो है वो भगवान से ही आता है, वो अलग से नहीं है कुछ, यू नो। सो इस तरह से भगवान यहाँ पर कहे कि आई एम द गैम्बलिंग, सो जो गैम्बलिंग चीटिंग प्रोसेस है वो भगवान से आती है। एक बार भगवान द्रोणाचार्य को भी चीट करना चाहे थे अश्वत्थामा होता, तो इस तरह से भगवान कोई ऐसा गैम्बल करना चाहता है तो भगवान उसके साथ भी गैम्बल करते हैं, यू नो। सो वो भी एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि सेम एग्जाम्पल कैन बी गिवन दैट एवरी डिपार्टमेंट इज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे सरकारी डिपार्टमेंट है। देयरफॉर अगर कोई जेल कैदी ऐसा बोलता है, प्रिजनर ऐसा कहता है आई एम ऑल्सो इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर वो ऐसा कहता है कि मैं भी सरकारी डिपार्टमेंट में हूँ, लेकिन वो कैदी के रूप है, सो दैट सॉर्ट ऑफ नॉलेज इज नॉट गुड, इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट लेट मी गो टू जेल, वो ऐसा मानने वाला। एक बार ऐसा हुआ था हांगकांग में, एक व्यक्ति ने प्रभुपाद के पास, पत्रकार आए थे प्रभुपाद के पास हांगकांग में, और प्रभुपाद को कहा कि वहां पर कोई बालकृष्ण कोई नाम का कोई योगी या कोई ऐसा था, अपने आपको भगवान कह रहा था उस समय, तो प्रभुपाद को वो लोग जानबूझकर पूछ करते, बार बार पूछते थे इसके विषय में कुछ कहो, इसके विषय में, तो प्रभुपाद उत्तर ही नहीं दिया। जब भी पूछे ना प्रभुपाद और कुछ बात हो, और कुछ बता ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, कितनी बार पूछा फिर भी वो पूछे रहे। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि तुम जानना चाहते हो उस व्यक्ति के विषय में, तो तुम सुनो फिर मेरी बात, अगर तुम जानना चाहते हो उसके बारे में, ही इज अ चीट नंबर 1, ही इज गॉड, ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ गॉड, इज डीओजी डॉग, वो एक नंबर का धोखेबाज है और वो वास्तव में स्वांग के बराबर है जो अपने आपको भगवान कहते हैं। सारे न्यूज़पेपर में डाल दिया, ए, स्वामी जी ने इस महान आदमी को एक नंबर का धोखेबाज बोला है, और ऐसा सब पब्लिक डाल दिया सब जगह न्यूज में। कुछ समय के बाद ऐसा न्यूज में आया कि उसने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली, तो उसका पतन हो गया। तो ऐसा हुआ तो उसकी माँ वहां पर दौड़ करके आ गई, तो उसने माँ आकर देखा कि ये तो शादी कर लिया और इतना बड़ा साम्राज्य है उसका, इतना धन संपत्ति ट्रस्ट वगैरह सब बना हुआ है, तो उसका भाई भी था, तो बोले ये कृष्ण का भाई बलराम है। तो फिर वो उसने अनाउंस किया कि अब मेरा जो पहला वाला बेटा था वो अब भगवान नहीं रहा है, उसका पतन हो गया है, लेकिन मेरा दूसरा बेटा भी भगवान ही है, इसलिए अभी मेरा दूसरा बेटा इसकी गद्दी संभालेगा। तो सब लोगों ने बाद में फिर उसको पकड़ लिया पुलिस ने, ये सब धोखेबाज है सबके सब। तो अगर आप भगवान को चीट करना चाहोगे तो भगवान बोलते मैं सुप्रीम चीटर हूँ। जैसे आप भगवान के सामने कुछ खेल खेलोगे तो भगवान आपको ऐसे माया से प्रभावित कर देंगे कि आप खुद ही फंस जाओगे अपनी माया में। भगवान सुप्रीम चीटर है। तो और फिर बाद में भगवान कहाँ गया, चीट ऑफ ऑल चीट्स, व्हाट वाज द स्लोक, यस आई एम विक्ट्री, आई एम एडवेंचर, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, बलवानों का बल भगवान कहा कि वो मैं हूँ। सो वेल, इस तरह से भगवान ने ऋषियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, ऋषियों में सहयोगियों में व्यास, और उष्णा विचार करने वालों में शुक्राचार्य भगवान कहते वो मैं हूँ। सो दंड देने में सब प्रकार के नियमों में दंड में वो लास्ट होता है, और जहां विजय होता है उसमें नीति, नीति के बिना विजय नहीं होती, तो नीति भगवान कहते वो मैं हूँ। और मौन सबसे उत्तम रहस्य सीक्रेट माना जाता है। सो फर्दर मोर आई एम द जनरेटिंग सीड, सबका बीज मैं हूँ। यहाँ पर भगवान ने बता दिया, मैंने समराइज कर दिया अंत में, कोई भी ऐसी चीज है नहीं जो मेरे बिना अस्तित्व में रहती हो। हे शत्रुओं का दमन करना करने वाले व्यक्ति अर्जुन, मेरे इस विभूतियों का कोई अंत नहीं है, मैं केवल आपको संक्षिप्त में बताया जो लिस्ट। लेकिन नो दैट ऑल ऑपुलेंट ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस क्रिएशन स्प्रिंग बट फ्रॉम मेरे एक अंश मात्र से। फिर भगवान ने कहा कि इतना क्या सोच रहे हो अर्जुन, या इसमें और चीज ऐड कर दिया 42 में, एक चीज और ऐड कर दिया इसमें कि सारे ब्रह्मांड को एक अंश से धारण करने वाला हूं, तो विभूतियों की क्या बात है, सब कुछ तो मुझसे प्रकट होता है, एक अंश ब्रह्मांड को एक अंश से धारण करने वाला, जस्ट बाय वन पार्टिकल आई एम होल्डिंग द एंटायर सपोर्ट एंटायर यूनिवर्स। सो आई जस्ट रीड द लास्ट लाइन ऑफ परपोट, समबडी कैन रीड ऑल्सो। इफ हाउ एवर वन थॉरली स्टडी द डिफरेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपुलेंस एंड एक्सपांशन ऑफ कृष्णस एनर्जी, then one can understand without any doubt the position of Lord Sri Krishna and can fix his mind in the worship of Krishna without deviation. Well, there's just two more lines. The Lord is all pervading by the expansion of his partial representation, the super soul, who enters into everything that is, enter into everything that is. Pure devotees therefore concentrate their minds in Krishna consciousness in full devotional service. Therefore, they are always situated in the transcendental position. Devotional service and worship of Krishna are very clearly indicated in this chapter in verse 8 through 11. That is the way of pure devotional services. So, इस तरह से इस पूरे चैप्टर में we get to know कि इस तरह से भगवान सारे ईश्वर्य को धारण करने वाले हैं, और अभी आगे वाले चैप्टर से हम स्पेशल यूनिवर्सल फॉर्म पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।